नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कल शाम को दिल्ली से सटे हुए सीमा पे लगे हुए एक जगह है मेवात, जो हरियाणा का हिस्सा है। उसमें लगभग 103 गांव हैं और इसमें मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है। लगभग 80% से ज़्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं। ये सारे मुसलमान कभी हिंदू हुआ करते थे, लेकिन अब इस्लामिक आक्रमण के बाद ये कन्वर्ट हो गए और मुसलमान बन गए। और वहाँ उन गांवों के बीच में रहने वाले जितने भी हिंदू थे, उनके जीवन को प्रभावित करके या तो उन्हें वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया या उन्हें कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया। मेवात अपराध की दुनिया में भी एक अच्छा नाम रखता है। पूरे भारत में मेवात अपराध के लिए भी जाना जाता है। चूंकि पहले यहाँ हिंदू रहा करते थे, अभी जो मुसलमान हैं मेवात में उनके पूर्वज हिंदू ही थे, इसीलिए अभी भी वहाँ मंदिर बनी हुई है। 3-4 मंदिर है और पांडवकालीन मंदिर है, महाभारतकालीन मंदिर है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लोग साल में एक बार सावन में जलाभिषेक के लिए आते हैं और ब्रज मंडल के रूप में एक यात्रा की जाती है। इसी यात्रा के लिए कल हजारों लोग मेवात के उस मंदिर में पहुंचे थे। तभी जैसे ही यात्रा मंदिर में पहुंची, पहाड़ों के ऊपर से, मंदिर के चारों ओर पहाड़ी है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, उसके ऊपर से मेवात के मुसलमानों ने उस पर हमला कर दिया। चारों ओर से गोलियां और पत्थर चलने लगे। अत्याधुनिक हथियारों से लैश मेवात के मुसलमानों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए, कई लोग मारे गए, 5 लोग अभी भी लापता हैं। एक मिठाई की वहाँ दुकान थी जो सैनी जी के नाम से मशहूर था, उनको दुकान से बाहर खींचकर चौराहे पे मॉब लिंच करके मार दिया गया। लगभग 2000 महिलाएं और बच्चे और पुरुष जो ब्रजमंडल की यात्रा के लिए उस मंदिर में आए थे, किसी तरह मंदिर के भीतर अपनी जान बचाने में सफल रहे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब वहाँ पुलिस पहुँची, तब उनको रेस्क्यू करके वापस ले जाया गया। दंगा देर रात तक चलता रहा। जितनी भी गाड़ियाँ सड़कों पे हिंदू यात्रियों ने छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागा था, उन सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बड़ी बड़ी कारें, एम्बुलेंस, सब कुछ। फिर ये आग पहुँचते पहुँचते सोहना रोड और गुड़गांव तक पहुँचा। गुड़गांव में एक हीरो होंडा का शोरूम था, उसको लूट लिया गया। और इस तरह से रात भर मुसलमानों का एक तरफा राइट दंगा मेवात में चलता रहा। ये बड़ा अफसोस की बात है कि भारत में, बल्कि पूरे विश्व में भी कहें अब, और भारत में विशेष रूप से काफिर हिंदुओं के खिलाफ ऐसे हमले लगातार होते रहते हैं और लगभग 150-200 साल से होते रहे हैं। इससे पहले अभी दिल्ली में हमले हुए थे, नांगलोई में, और पूरे देश में सैटरडे को, चूँकि 2 दिन पहले मुहर्रम था, तो मुहर्रम के दौरान अनेक जगहों पे काफिर हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों का आक्रमण हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोगों को पत्थर से चोटें आई और आगजनी की भी घटना हुई, रेप की भी घटना हुई। बिहार में दरभंगा, अररिया पश्चिम बंगाल में काफिर हिंदुओं के मंदिरों को बंद कर दिया गया मुहर्रम के प्रोसेशन को निकालने के लिए। दिल्ली में जहांगीरपुरी में मंदिरों को बंद कर दिया गया प्रोसेशन निकालने के लिए। नांगलोई में बाकायदा पत्थरबाजी हुई मुसलमानों की तरफ से और काफिरों के ऊपर हमले किए गए। तो ये हमले लगातार होते आ रहे हैं, इस हमले में कोई बदलाव नहीं है, पैटर्न एक है। इससे पहले जो दिल्ली में बड़ा दंगा हुआ था उसका भी पैटर्न सेम था, दंगे की पहले तैयारी करो, फिर जैसे ही मौका मिले दंगा को अंजाम दो और काफिरों को इतनी बुरी तरह से दहशत पैदा करो कि काफिर वहां से ज़मीन बेचकर घर बेचकर चला जाए और फिर उस क्षेत्र में एक जैसा साम्राज्य, इस्लामिक साम्राज्य स्थापित हो जाए। इन दंगों का एक मूल उद्देश्य यह भी है। और ये ट्रायलॉजी जो है इस्लाम का, ये पॉलिटिकल इस्लाम का जो अस्त्र है, वैचारिक अस्त्र है जिहाद, उसी का हिस्सा है, उसका ये प्रमुख टूल है जिसके द्वारा इसे अंजाम दिया जाता है। इस ठीक इसी तरह का दंगा आप विश्व में भी देखेंगे, चाहे अभी आपने देखा फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में या अन्य जगहों पे, अभी कुछ दिन पहले जर्मनी में भी कुछ दंगे हुए थे। तो इन दंगों का उपाय क्या है? क्या कानून, संविधान, सरकार, पुलिस, सेना इन दंगों का समाधान कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि इन दंगों का मूल कारण कुछ और है और ये समाधान जितने भी गिनाए गए ये बिल्कुल अलग तरह के समाधान है। ये वैसा ही है कि मलेरिया की बीमारी को या शरीर में यदि बुखार हो तो उस बीमारी को आप हैजे के दवा से ठीक नहीं कर सकते। दोनों का काम अलग है, दोनों के लक्षण अलग हैं, दोनों के कार्य अलग हैं। इसी तरह जब तक विश्व का काफिर और भारत का काफिर हिंदू इस जिहाद के मूल तत्व को नहीं समझ लेगा, इस्लाम की बारीकियों को स्वयं में आत्मसात नहीं कर लेगा और उसे यह स्वीकार नहीं करेगा कि समस्त हिंदू समुदाय जो है वो काफिर है और जिहाद के भीतर काफिरों को कैसे डील किया जाना है, इसके लिए सूत्र दिए हुए हैं, उन सूत्र को पढ़ना आवश्यक है, सूत्र को समझना आवश्यक है और उसी सूत्र के अवलोकन में, उसी के रोशनी में फिर उसका उपाय करना आवश्यक है। चूँकि ये दैवीय है, जिहाद एक दैवीय और पवित्र कार्य है इस्लाम में, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। जिहाद एक ऐसा कार्य है जो हर मुसलमान को करना ही है, उसके ऊपर अनिवार्यतः लागू होता है और इस जिहाद को करने से उसके स्वर्ग जाने की, उसके जन्नत में जाने की जो गारंटी है वो पक्की होती है। इसलिए इस कृत्य को न तो कोई कानून रोक सकता है, न संविधान रोक सकता है, न कोई मानवीय अवधारणा रोक सकता है, न नैतिकता की कोई मॉरल फ्रेमवर्क रोक सकता है। इन सब से ऊपर है यह, क्योंकि जिहाद एक दैवीय परिकल्पना है, ये मानवीय परिकल्पना नहीं है। जिहाद देवताओं के ऊपर से, जिहाद मतलब अल्लाह के तरफ से आया हुआ चीज़ है। इसलिए मानवीय स्तर पर बनाए गए कानून इस पे लागू नहीं हो सकते। फिर उपाय क्या है? सबसे पहले काफिर समाज इस बात से पूरी तरह अनजान और अनविज्ञ है कि इस्लाम क्या है और जिहाद क्या है और जिहाद और काफिरों के बीच, इस्लाम और काफिरों के बीच अंतर संबंध क्या है, इसके बारे में पूरी अनविज्ञता है, पूरी तरह से अंधेरा है काफिरों के बीच। सबसे पहले इस अंधेरे को दूर करना होगा, इस्लाम की बारीकी को समझना होगा, जिहाद की बारीकी को समझना होगा और उसके साथ ही यह भी समझना होगा कि काफिरों का जिहाद के मौलिक तत्वों से क्या कनेक्शन है, क्या अंतर संबंध है, क्या लेना देना है, जिहाद में काफिरों से कैसे डील किया जाएगा, इस बारे में क्या कहा गया है। और फिर उस तरह उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक वैचारिक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा जिससे आप इस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। मानवीय कानून से जिहाद से नहीं लड़ा जा सकता है और तब तो और भी नहीं लड़ा जा सकता है जब काफिर जिहाद के बारे में कुछ जानता ही नहीं हो। इसलिए मेवात जैसी घटनाओं को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में रोकने के लिए इस्लाम और जिहाद के बारे में अध्ययन काफिरों के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही काफिरों की सुरक्षा की गारंटी है, और जब तक ये नहीं होगा ये घटनाएं होती रहेगी पूरे विश्व में, क्योंकि ये घटनाएं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, ये किसी भी मानवीय संविधान और कानून से ऊपर है, परे है। धन्यवाद दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही।